इशिका को माहिर और आयशा की बातों से थोड़ा बहुत शक हो गया था कि वो राधिका की बेटी है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए इशिका राधिका से मिलने के लिए सिन्हानिया हाउस आई। वो राधिका और अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहती थी, लेकिन आदर्श की चोट लगने की वजह से इशिका को आदर्श के साथ हॉस्पिटल आना पड़ा। वहां उसे आदर्श के ब्लड ग्रुप के बारे में पता चला, जो उसके ब्लड ग्रुप से अलग था। इशिका की खुशियां पल भर में मिट्टी में मिल गईं। वहां हॉस्पिटल में मालविका आदर्श से मिलने के लिए आई तो इशिका ने उसे अपने बाप के बारे में पूछा। ब्लड ग्रुप अलग होने की बात पता चलने पर मालविका के पास ही अच्छा मौका हाथ लगा था, जब वो इशिका को पूरी तरह सिंघानिया फैमिली से अलग कर सकती थी। मालविका ने इशिका की तरफ देखा और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब तुम इतना पूछ ही रही हो तो बता देती हूँ कि हमारा सिंघानिया फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना ही आदर्श तुम्हारा बाप है। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? इशिका ने हैरानी से पूछा। सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं नहीं जानती तुम्हारा बाप कौन है, मेरा कईयों के साथ रिश्ता था, मालविका ने बेपरवाही से कहा। मालविका ने महसूस किया इशिका पर उसकी बातों का असर हो रहा है तो वो आगे बोली, बस यही वजह थी कि मैं हमेशा तुम्हें यही कहती रहती थी कि सिंघानिया फैमिली से दूर रहो, आयशा की हर बात मानो ताकि तुम्हारा सच किसी के सामने ना आए। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया था सिंघानिया फैमिली में घुसने के लिए। अब समझ में आया कि मैं ये क्यों कहती थी कि तुम्हें सिंघानिया फैमिली का एहसानमंद होना चाहिए। उन्होंने तुम्हें अपना सरनेम और नाम दिया है, वरना मुझे तो याद भी नहीं कि तुम्हारा बाप कौन है। मालविका सब कुछ इतनी बेशर्मी से बता रही थी, इशिका ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली थीं। इशिका ने खुद को सख्त करके कहा, जब मैं 4 साल की थी तब तुमने मुझे बेच दिया, क्या उसका भी यही कारण था? हाँ, यही वजह थी। मैं तुम्हें खुद से और सिंघानिया फैमिली से दूर करना चाहती थी ताकि कभी गलती से भी मेरा राज ना खुले, मालविका ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। इशिका की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी था, जिसे देखकर मालविका ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम इतना दुख किस बात का मना रही हो? तुम तो आदर्श को अपना बाप मानती तक नहीं हो। बहुत पहले तुमने उनसे रिश्ते तोड़ दिए थे, तो तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात कान खोलकर सुनो, गलती से भी इसके बारे में किसी को पता चला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अपने चक्कर में मेरा फ्यूचर खराब मत करना। इशिका को फिर से भला बुरा कहने के बाद मालविका वहां से आदर्श को ढूंढते हुए दूसरी तरफ जाने लगी। उसके जाते ही इशिका की आंखों से आंसू का कतरा बह गया था। एक ही दिन में उसे इतनी खुशियां मिली थीं, तो अगले ही पल हमेशा की तरह उसकी खुशियां बर्बाद हो गई थीं। इशिका हॉस्पिटल की लॉबी में खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो वहीं पर जम गई और उसके आसपास की दुनिया काफी तेजी से चल रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अभिमन्यु उसके पास आया और इशिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले जाते हुए सख्ती से कहा, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? याद है ना तुम्हें मिसेस सिंघानिया के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाना है, अब चलो यहाँ से अंदर। अभिमन्यु के इतना कहने के बावजूद इशिका वहां पर सुन खड़ी थी। अभिमन्यु जब उसे पकड़कर कुछ कदम चलने लगा तो इशिका ने उसका हाथ झटक दिया और धीरे से कहा, मुझे कहीं नहीं जाना मिस्टर राजवंश, प्लीज झूठी उम्मीदें मत दीजिए। अभिमन्यु समझ गया था कि इशिका ऐसा किस वजह से कह रही है। आदर्श और उसका ब्लड ग्रुप अलग होने की वजह से वो टूट गई थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और उसे समझाते हुए कहा, हो सकता है आदर्श सिंघानिया तुम्हारे बाप नहीं हो, लेकिन राधिका सिंघानिया तुम्हारी माँ। अभिमन्यु की बात पूरी होने से पहले ही इशिका ने सख्ती से उसकी तरफ देखकर कहा, प्लीज ये सब मत कहिए। वो कुछ पल रुकी और फिर आगे कहा, आदर्श सिंघानिया कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो राधिका आंटी से बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत परवाह करता है। राधिका आंटी बहुत ही अच्छी औरत है, हमें इस तरह उनके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये सोचना भी पाप है कि उनके आदर्श सिंघानिया के अलावा किसी और के साथ रिलेशन हो सकता है। अभिमन्यु इशिका को समझाना चाहता था पर इशिका समझने के मूड में नहीं थी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और सुबकते हुए कहा, अब तक यही लगता था कि किसी की नाजायज औलाद होना सबसे बड़ा होता है, लेकिन मेरी हालत तो उससे भी खराब है। मेरी माँ को ये तक नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। अभिमन्यु ने उसे शांत करवाने के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन इशिका ने पहले ही उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, मैं आपके सामने रोना नहीं चाहती हूँ, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, अभिमन्यु ने जवाब दिया और उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया था। हालांकि उसने अभी भी इशिका को पूरी तरह अकेला नहीं किया था। अभिमन्यु इशिका की तरफ देख रहा था जो वहां बेंच पर सिर झुकाकर बैठी थी। इशिका की आंखों में आंसू थे। उसे इस हाल में देखकर अभिमन्यु को बहुत बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ मालविका आदर्श से मिलने के लिए उसके रूम में पहुंची, लेकिन वो दरवाजे पर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। आदर्श और राधिका बात कर रहे थे और वो बातें इशिका के बारे में थी, इसलिए वो चुपचाप उन्हें सुनने लगी। राधिका ने आदर्श को समझाते हुए कहा, आप खामोखा इशिका को इतना गलत समझते हैं, आज उसी ने मदद की तभी हम हॉस्पिटल पहुंच पाए। आप उसे इतनी नफरत क्यों करते हैं जबकि वो आपकी खुद की बेटी है? आपको उसके बारे में अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अलग नजरिया तो तुम्हें आयशा के लिए भी अपनाने की जरूरत है राधिका, जो आजकल तुमसे दूर हो रही है, आदर्श ने जवाब दिया। राधिका कुछ पल रुकी और फिर नजरें नीचे करके कहा,
मैं आयशा का अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखती हूँ, लेकिन आपको भी यशिका का ख्याल रखना चाहिए। आखिर वो आपकी इकलौती बेटी है। मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट थी और ये सच है कि मैं आपको बच्चा नहीं दे पाई। ऐसे में सिर्फ यशिका ही बचती है जो आपका खून है। आप उसके साथ में ऐसे पेश क्यों आते हो? आदर्श ने राधिका के बालों को उसके कान के पीछे किया और फिर उसके फोरहेड पर किस-किस के कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि इस बात का जिक्र भी नहीं होना चाहिए। शादी से पहले मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारे बच्चे को मैं अपना बच्चा समझकर पालूंगा, उसे प्यार करूंगा, और मैंने अपना वादा निभाया है। मेरी आयशा के अलावा दूसरी औलाद नहीं है। राधिका आदर्श को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने आगे कहा, आपने अपना प्रॉमिस निभाया, इसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी थैंकफुल रहूंगी, पर आप यशिका के साथ सच में अन्याय कर रहे हैं। आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, दिल्ली छोड़ा, अपना पूरा बिजनेस यहाँ पर सेटल किया, ये काफी था। अब प्लीज मेरे कहने पर इतना और कर दीजिए। सॉरी राधिका, ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो मालविका की भी बेटी है। तुम उसके साथ अच्छे से पेश आती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हारा साथ भी दूंगा। वो बायोलॉजिकली मेरी बेटी हो सकती है, लेकिन दिल से मैं कभी उसे अपना नहीं पाऊंगा, आदर्श ने भी जिद करते हुए कहा। बाहर खड़ी मालविका ने उनकी बातें सुनी तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। मालविका ने आदर्श को फंसाने के लिए उसे ड्रग्स देकर उसके साथ रिलेशन बनाए थे और प्रेग्नेंट होने के बाद एमनियोसिंथेसिस टेस्ट करके ये साबित किया था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा उसी का है। राधिका की शादी आदर्श से उसके बाद में हुई थी। मालविका को यही लगता था कि राधिका उन दोनों के बीच में आ गई है, वरना वो उसे शादी के लिए मना ही लेती। बिल्कुल सही राधिका सिंघानिया, मालविका ने अपने मन में कहा, तुम सच में अपने बच्चे के साथ हमारे बीच में आई थी। मैं तुम दोनों माँ बेटी को कभी एक नहीं होने दूंगी। आज यशिका को जो गलतफहमी हुई है उसका फायदा उठाकर उसे कभी सिंघानिया फैमिली के पास नहीं आने दूंगी। तुमने मुझे और आदर्श को दूर किया तो इसकी सजा तुम्हें और तुम्हारी बेटी को उम्र भर भुगतनी होगी।
मालविका के चेहरे पर एविल स्माइल थी, तो वहीं यशिका ना जाने कब तक हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बैठी रही। यशिका अभिमन्यु के सामने रोना नहीं चाहती थी, तो वो बाहर आ गई थी। वो आने जाने वाले लोगों को देख रही थी। अचानक उसे अपने कंधे पर गर्माहट महसूस हुई। यशिका ने ऊपर की तरफ देखा तो वो अभिमन्यु था, जिसने अपना ब्लेजर निकालकर यशिका के कंधे पर अच्छे से सेट कर दिया था। वो उसके पास बैठा और धीरे से बोला, क्या इस तरह खुद को तकलीफ देना सही है? मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप जाकर अपने काम कीजिए मिस्टर राजवंश, यशिका ने उसे धीरे से जवाब दिया। अभिमन्यु यशिका की आंखों की तरफ देख रहा था। ये नहीं था कि वो पहले उसकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं था, लेकिन आज उसे यशिका और भी अच्छी लग रही थी। उसे यशिका की सबसे अच्छी क्वालिटी यही लगती थी कि लोग उसे कितना भी गिराने की कोशिश करें, वो उतनी ही मजबूती से खड़ी होती थी। दुबली पतली सी, लेकिन एक स्ट्रांग लड़की जो दुनिया की भीड़ में अकेली सबसे लड़ना जानती थी। अभिमन्यु ने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, अच्छा मिस सिंघानिया, तुम्हें क्या लगता है आशीष और माहिर के बीच में कौन सा राज हो सकता है? मुझे जानने की जल्दी नहीं है मिस्टर राजवंश, आज नहीं तो कल माहिर मुझे खुद बताएगा, यशिका ने इतने दुख में भी हल्का मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, और क्या सोचा है तुमने? आयशा सिंघानिया के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अभिमन्यु ने आगे पूछा। वो कैसे भी करके यशिका से बात करना चाहता था। आप आयशा को जानते नहीं हो, सिर्फ माहिर ही उसका मोहरा नहीं है, और भी लोग हैं। उसके ये गलत डिसीजंस उसके फ्यूचर को पूरी तरह खत्म कर देंगे, यशिका ने जवाब दिया। और वो कैसे? अभिमन्यु ने भौंहें उठाकर पूछा। आप बस देखते जाइए, अगले 15 दिन में आयशा का पूरी तरह पर्दाफाश हो जाएगा, यशिका ने मुस्कुराकर कहा। वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। तब तो 15 दिन बाद मुझे गुड न्यूज का इंतजार रहेगा मिस सिंघानिया, अभिमन्यु ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा। बात करते हुए वो यशिका के पास आकर बैठ गया था। उसके बाद उन दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस काफी देर तक वहां बैठे रहे। ऐसा नहीं था कि यशिका की जिंदगी में पहले मुसीबतें नहीं आई थीं, पर उसने हमेशा खुद को अकेला पाया था, पर आज उसके साथ अभिमन्यु था। अभिमन्यु राजवंश की जो पोजीशन थी उसकी जिंदगी का हर एक सेकंड कीमती था, पर आज वो अपने काम और टाइम की परवाह छोड़कर बस यशिका के साथ चुपचाप बिना किसी फायदे के बैठा था। वहीं इस बीच कियारा के सोने के बाद मिस्टर और मिसेस मित्तल घूमने के लिए बाहर की तरफ आई। शाम होने की वजह से हल्का अंधेरा हो चुका था। वो दोनों एंट्रेंस पर पहुंचे तो उन्होंने देखा सीढ़ियों पर अभिमन्यु और यशिका बैठे हुए थे। यशिका सामने की तरफ देख रही थी तो वहीं अभिमन्यु की निगाहें यशिका पर थीं। यशिका को देखते ही अचानक न जाने क्यों मिस्टर मित्तल ने हल्की तेज आवाज में कहा, मैडम मर्चेंट। उनकी आवाज सुनकर यशिका ने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा। उसने हिचकिचाते हुए गौतम मित्तल से कहा, अंकल आपने अभी अभी मुझे कुछ कहा? गौतम यशिका की बात का जवाब देते उससे पहले नैना ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। वो यशिका की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, आजकल कियारा के साथ रहते हुए ये बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लगा है, तुम्हें भी परेशान कर रहा है, तुम इसके बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। यशिका इस बारे में आगे कुछ पूछना ले ये सोचकर नैना ने जल्दी से उससे पूछा, तुम यहाँ इस वक्त सीढ़ियों पर बैठकर क्या कर रही हो?
मिस्टर सिंघानिया को चोट लगी थी तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी, बस अब जाने का सोच ही रही थी। इशिका ने जवाब दिया, हाँ चली जाओ और जाकर आराम करो, काफी थकी हुई लग रही हो और शाम का वक्त भी हो गया है, नैना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। इशिका ने उनकी बात पर हामी भरी और उठकर वहां से जाने लगी। उसके पीछे पीछे अभिमन्यु भी जा रहा था। कुछ ही देर में अभिमन्यु और इशिका राजवंश विला में पहुंचे। वहां आते ही वो दोनों सीधे वसुधा के विला में चले गए थे। उन्होंने देखा वसुधा लिविंग रूम में थी और अब तक सोई नहीं थी, वो उनके आने का इंतजार कर रही थी। उनकी नई केयर गिवर मिस निवेदिता उनके पास थी। वसुधा अभिमन्यु और इशिका को देखकर शांत हो गई थी, ये देखकर निवेदिता को भी अच्छा लगा। निवेदिता ने प्यार से वसुधा से कहा, मिस्टर राजवंश और मिस सिंघानिया आ गए हैं। मिसेस राजवंश, अब तो आपको सुकून मिल गया होगा, आप प्लीज जाकर आप अपने कमरे में आराम कीजिए, रात काफी हो गई है। निवेदिता के कहते ही वसुधा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और उठकर उनके पास जाने लगी। अभिमन्यु जल्दी से उनके पास आया और उन्हें संभालते हुए बोला, दादी प्लीज बी केयरफुल। अभिमन्यु को वसुधा की बहुत फिक्र थी। अचानक वसुधा ने उसका हाथ छटका और इशिका की तरफ बढ़ते हुए कहा, मेरी बहू आ गई, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। अभिमन्यु अपने हाथ की तरफ अजीब नजरों से देख रहा था, जिसे कुछ पल पहले वसुधा ने ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो वहां पर हो ही ना। ये सब देखकर निवेदिता भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मिस सिंघानिया, अच्छा हुआ आप आ गई, क्योंकि दादी आपको बहुत याद कर रही थी। अगर लोग सच ना जानते हो तो वो पक्का आपको उनकी बहू ही समझेंगी। मिस्टर राजवंश के बाद अगर इन्होंने इतनी अटेंशन किसी को दी है तो वो आप हैं। आपसे तो वो मिस्टर राजवंश से भी ज्यादा प्यार करती हैं, निवेदिता ने सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु इन सब में अजीब नजरों से वसुधा की तरफ घूर कर देखा। उसके बाद वो इशिका को देख रहा था। कहीं ना कहीं उसे इशिका से चलन हो रही थी, क्योंकि उसने वसुधा की जिंदगी में उसकी जगह जो ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ गौतम और नैना वापस कमरे में आ गए थे। गौतम ने इशिका के सामने उसे मैडम मर्चेंट कहकर बुलाया, इस वजह से नैना उससे नाराज थी। कमरे में आते ही नैना ने गौतम से सख्त शब्दों में कहा, वो क्या था, आपने इशिका को लेडी मर्चेंट कहकर बुलाया, उसे शक हो जाता तो फिर? मैं क्या करूं, जब भी वो मेरे सामने आती है तो मुझे लेडी मर्चेंट की याद आ जाती है। मैं तो इस बात को लेकर श्योर भी नहीं हूं कि वो दोनों एक जैसी लगती हैं क्या, बस मुझे अब फोटो के आने का इंतजार है, गौतम ने सफाई देते हुए कहा। हाँ तो जब 5 दिन बाद में फोटो बनकर आ जाए उसके बाद में जाकर इशिका को दिखा दीजिएगा, मैंने उसके बारे में पता किया था, वो राधिका मर्चेंट की बेटी नहीं है। फिर आप क्यों बेवजह इस मामले को इतना खींच रहे हैं, नैना ने नाराजगी जताते हुए कहा। जब फोटो आ जाएगी तब तुम्हें यकीन हो जाएगा और मैं इशिका को भी दिखा दूंगा, कभी कभी लगता है कि वो बिल्कुल राधिका की छवि है। नैना, ऐसा भी तो हो सकता है कि हॉस्पिटल में बच्चे बदल दिए गए हों, गौतम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। अनजाने में ही सही गौतम ने सच कह दिया था, जिसे सुनकर नैना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे भी कहीं ना कहीं डाउट था कि इशिका मालविका की बेटी नहीं है।